जेमां प्रेम और शांति और आनंद इतना बढ़ता चला जाएगा कि हंसते हंसते हम असमझो कि अपने बोध हो जाएं और भगवान को प्राप्त हो जाएं। तो ये तीन बात तो पदू तो ये करता है और फिर ये बात उसे अपने आप ये होने लगती है, फिर इसे ये बात छूट नहीं सकती। जब इसको रस आ जाता है तो फिर भगवान इसकी बाल गौर को लेकर के और इससे भगवान ये सुख कराते, जब ये कर नहीं सकता तो भगवान ही अपने हाथ में इसकी बाल गौर लेकर के और इससे सुख कराते हैं। और जो भगवान नचाते हैं वो नाचता रहता है, उस नाचने के भीतर के माँ इसको जो आनंद आता है वो आनंद करने के वक्त में नहीं आता। करने के वक्त के मन भगवान के लिए करता है, किंतु एक प्रकार से कर्तापन का अभिमान तो बना है ना। अब वो अभिमान भी जब नहीं रहता करे भी कौन, भगवान जैसे तो करा ले नहीं तो नहीं, तो भगवान उसे अपने आप ही करवा लेते सब कुछ। फिर जो कुछ होता है एक प्रकार से समझो कि भगवान की मर्जी के माफक है। पहले भी भगवान की मर्जी के माफक ही वो करता है और फिर तो होता है वैसे ही कि सबके बीच के मां भगवत बुद्धि करके सबकी सेवा करना, ये पहले की बात कहता हूं। और सब और सबसे बढ़कर नारायण को परमात्मा को समझ करके निरंतर भगवान का भजन ध्यान करना और भगवान को सबका सुहृद समझ करके और भगवान की शरण जाना, और फिर ये सब बात अपनी होने लग जाती है और उससे के फलस्वरूप में भगवान की प्राप्ति उसको शीघ्र हो जाती है। प्रकरण कुछ लंबा हो गया, दोनों बात कही, जो एकांत में जो बात कही थी भाइयों लोगों से जो करी थी वो भी कही, और उसको और कुछ सजा करके उसको और जो बाकी रह गई थी उन्होंने जो फिर पूछा कि बाकी रहेगी व्याख्यान में कह दू, तो बाकी रही थी वो भी कह दी और वहां हुई उसको भी थोड़ो अंश कहे जितने याद आए। और अब समय अतिकाल हो गए इस वास्ते ये बंद करने पर तीन बात आई, एक तो यह कि आपके जिससे से ही करो, दूसरी बात यह कि परमात्मा के निराकार स्वरूप की ध्यान की बात, तीसरी बात यह कि भगवान के प्रेम की बात, तीनों बात बहुत उत्तम है। तो उन तीनों के बीच के मां ध्यान की बात कहने पर विचार, इसलिए कि आप एक दिन पहला भी ध्यान की बात कही थी, ध्यान की बात कहने के लिए कही थी, पर फिर और प्रश्न लोगों का आया परमात्मा के निराकार को जो ध्यान को विषय है बहुत महत्व की चीज है, और समझ में आ जाए तो बस मैं को उसे उद्धार हो जाता। जैसे इस प्रकार को ध्यान नहीं कि महीनों तक मैंने साधन करता करता परमात्मा मिले जो बात कही जावे और वो समझ में आ जावे तो उसी वक्त परमात्मा की प्राप्ति होगी। वो तो समझने की चीज है, अपने बुद्धि के वहां समझ में आ जावे तो वो ध्यान तो छूट नहीं सके। जो अपने वास्तव के बीच के वहां ध्यान जो कम बेसी हो जावे या छूट जावे तो वो ध्यान को आभास मात्र है, असली ध्यान नहीं। ध्यान में तो समझो कि इतना आक्षण है, इतनी उसकी महत्ता है कि मैं की सामर्थ्य नहीं कि वो मैंने छोड़ सके। वो तो ध्यान है परमात्मा को, वो तो रसमय है आनंदमय है अमृतमय है, वैसे छूट ही नहीं सके। और राज जी जो है उनको जो परमात्मा में ध्यान रहते थे प्रेम रहते थे तो भगवान भक्त प्रहलाद जी, तो पिता ने बहुत उसके ऊपर ताड़ना की कि तुम मेरे दुश्मन की भक्ति छोड़ दो, और उसके छोड़ने से मैं तुम्हारे को जो है युवराज पद दूंगा। बोले पिताजी मेरे से छूट नहीं सके। बोले नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारे को ध्यान से मार डाल दे। बोले जो कुछ करो। तो उन्होंने बड़ा भारी अत्याचार किया और प्रहलाद का बाल विवाह का नहीं हुआ, किंतु वे अपने सिद्धांत में डटे रहे। क्यों? कि उसकी सामर्थ्य नहीं प्रहलाद की उसको छोड़ सके। इसी प्रकार से कि परमात्मा को जो ध्यान है वो जब लग गया है तो वो छोड़ नहीं सके। श्रद्धा हो जा, विश्वास हो जावे, तो मैं ध्यान के फल स्वरूप में उसी वक्त मैंने परमात्मा की प्राप्ति हो जा। परमात्मा को जो ज्ञान है वो फल ही परमात्मा की प्राप्ति है, और परमात्मा को जो ध्यान है वो फल है परमात्मा को ज्ञान, और परमात्मा के ज्ञान को फल है परमात्मा की प्राप्ति। तो जब ध्यान हो जाता है तो उसका तुरंत ज्ञान हो जाता है परमात्मा का, और ज्ञान हो जाता है तो उसी वक्त प्राप्ति हो जाती है। अपने हाथ में जो अभी एक घंटा की ट्रेन है जिसमें समझो कि कछु बीती है किसी और आगे भी बड़ी बढ़ाई जा सके, छह से पांच सात दस मिनट और छह बजे तक ही खत्म करी जा सके। पर यह ख्याल कर लेना चाहिए जो बात बतलाई जाए मैंने समझने की चेष्टा करनी चाहिए, और उसी प्रकार अपने स्थिति बनानी चाहिए, और ये विश्वास रखे कि भाई अपन आज जो ध्यान लगेगो कि ऐसा लगेगो जो आज पहला कभी नहीं लगे, और वह ध्यान के फर्स्ट रूप में परमात्मा की प्राप्ति तक हो सके जो भी आपने कितने विश्वास हो जाए। जितने जो साधन हैं वे ध्यान के लिए है, सब साधना का फल है ध्यान। परमात्मा के ध्यान के समान और कोई साधन नहीं है, चाहे वो ध्यान सगुण को चाहे निर्गुण। ऋषि और मुनि लोग जो है वर्षों तक अपना चेष्टा करते थे तब कोई ध्यान लगता था। वो जो समय क्यों लगता था? पात्र बनने में, और पात्र जब बन जाते थे तो फिर ध्यान तुरंत लग जाता। तो हम लोग यहां वर्षों से आते हैं तो यदि पात्र नहीं भी हैं तो परमात्मा की दया से अपात्र भी पात्र बन सकता है, और परमात्मा की दया सबके ऊपर है ही। खाली हमको तो यह मानना है कि परमात्मा की हमारे ऊपर दया है, फिर उसे दया से होने वाले लाभ से हम कभी वंचित नहीं रह सकते। तो ये तो मानने में अपने लगे क्या है, ये तो हमारे सौभाग्य की बात है कि हम इस बात को मान ले रहे हैं कि परमात्मा की हमारे ऊपर अपार दया। ध्यान में तो समझो कि सब प्रकार से हमारे को मदद ही मिलती है, भगवान से भी मदद मिलती है और शास्त्रों से भी मदद मिलती है, महात्माओं से भी मदद मिलती है, तो उसका बाधक तो है ही नहीं। तो ये अपना निश्चय एकदम दृढ़ होना चाहिए कि ध्यान के समान और कोई वस्तु नहीं है, और वो ध्यान एक प्रकार से लगना कोई कठिन नहीं है। और भगवान के निराकार स्वरूप का जो ध्यान है वो इतना सहज है कि निराकार रूप से तो भगवान शब्द हमें प्रत्यक्ष के वहां परिपूर्ण है ही, व्यापक है ही। जो चीज नहीं हो उसका कोई आदमी ध्यान करे तो कठिनता पड़े, और जो चीज है और प्रत्यक्ष है उसके ध्यान में क्या कठिनता है। या जो संसार है या तो बिना हुई दिख रही है या तो है नहीं, उसके लिए ये प्रमाण है कि नाश तो भी देते भाव, ना भाव भी देते सतव। जो सत्वस्तु होती है उसका कभी अभाव नहीं होता है, और जो मिथ्या जो वस्तु होती है वो कायम नहीं रहती है। तो संसार के जितने जो पदार्थ है कोई भी कायम नहीं रहता, आपके देखते देखते क्षय होता चला जाता, कोई भी पदार्थ देखिए। तो इसको एक प्रकार से सत्य मानना मूर्खता ही है। अब जो सत्वस्तु है उसका कभी अभाव होता नहीं, तो वो सत्वस्तु परमात्मा है। शरीर तो नाशवान है और परमात्मा नित्य वस्तु है, सत्य वस्तु है, और परमात्मा का अंश होने से ये जीवात्मा भी सत्य वस्तु है। नहीं जायते मृत्ये वा कदाचित नाइन भूतवा भवितावान हुए अजो नित्य शास्त्र पुराण न हन ते हन माने शरीर। आत्मा जो है न तो कभी जन्मता है न कभी मरता है, और आत्मा उत्पन्न होकर के कायम नहीं होता, बच्चों सदा से ही कायम है। इसलिए आत्मा अज्ञ है, नित्य है, शाश्वत है, पुराण है, और शरीर के नाश होने पर आत्मा का नाश नहीं। तो इस प्रकार से आत्मा नित्य वस्तु है। युक्ति से भी आप विचार करके देखो, जो चीज हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, हमारे सामने है, जो दृश्य मात्र है, इनका तो हम त्याग भी कर सकते हैं, अभाव भी कर सकते हैं, इसमें रहित भी हो सकते हैं, किंतु जो इसके भीतर में आत्मा है, इसका खुद जो स्वरूप है, उसका कैसे त्याग हो सके, कैसे अभाव हो सके, वो तो भावरूप चीज है। इस वास्ते वो नित्य, वो सत्य। तो हम लोगों का परमात्मा का श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक, विश्वास पूर्वक ध्यान करना चाहिए। परमात्मा का निराकार स्वरूप बताया जाता है कि वो सत चित आनंद घन है। सत माने परमात्मा है और चित माने वो जड़ नहीं है, चेतन है। जड़ और चेतन की व्याख्या आपको बताई जाती है कि जैसे हमारा शरीर है ये जड़ है, और इसके जानने वाला जो आत्मा है वो चेतन है। एक तो वो चीज है जो जानने में आवे, एक वो चीज है जानने वाला हो। तो जानने वाला जो होता है वो चेतन होता है, और जो चीज जानने में आती है वो जड़ होती है। जैसे ये हमारी चदर है, जानने में आती है तो जड़ है। चदर में वो शक्ति नहीं यात्री पने की कि हमको जाने, किसी को चदर जानती नहीं। तो जितने जो जड़ पदार्थ है, जो देखने में आते हैं, समझने में आते हैं, ये मकान है, ये मनुष्य के शरीर है, कुर्सी है, ये जो कुछ सब गढ़ पटारी जो पदार्थ है, सब जड़ है। इनमें किसी के मन भी समझो कि वो जानने वाली शक्ति नहीं है। हमारा वो शरीर है ये जड़ है, और शरीर के भीतर के मां जो जानने वाली शक्ति है वो चेतन है। तो इसी तरह वो चेतन जो है परमात्मा है, और वो सब में व्यापक है, और इसके स्वार भी है। सारा ब्रह्मांड उस परमात्मा के किसी एक अंश में है, और परमात्मा तो इतनी अनंत है कि देश करके भी अनंत, काल करके भी अनंत, उनकी कोई सीमा नहीं, कोई उसका कभी अंत नहीं। और जितनी अंत वाली चीज है ये विनाशील है, एक देशी जो है वो विनाशील है। ये हमारा शरीर एक देशी है तो विनाशील है, किंतु इसके भीतर में जो आत्मा है वो चेतन है, अनंत है। भगवान गीता में कहते हैं, इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्ते विधीयते एतदियो इति तं प्रभु क्षेत्रज्ञ इति तद्विध। हे कौन्तेय, शरीर है सो क्षेत्र है, खेत की तुलना दी खेत जड़ होता है, ये निपजाऊ खेत है। खेत में जैसा बीज बोया जाता है वैसा गाछ होता है, तो इस शरीर के वहां कर्मों के संस्कार जैसे भरे जाते हैं, उसी के अनुसार आगे जाकर फल होता है। इस वास्ते ये कर्म भूमि है, इसे के द्वारा जैसा कर्म किया जाता है उसी के अनुसार भाग में उसका फल होता है। इस वास्ते इसको क्षेत्र कहा। और इसका जो जानने वाला है, इसका जो ज्ञाता है वो क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्र का जानने वाला क्षेत्रज्ञ वो ऐसा आत्मा है। यह बात उस परमात्मा के तत्व जानने वाले महापुरुषों ने कही है। तो इसके भीतर में जो आत्मा वो चेतन है, शरीर है सो जड़ है। ये जो ब्रह्मांड आपको दिखता है वो चेतन परमात्मा सारे ब्रह्मांड के बीच के मां व्यापक होकर के भी उसके स्वाय भी है। ये सारा का सारा ब्रह्मांड तो उस परमात्मा में आकाश में जैसे कोई एक तारा हुए यूं है, और ऐसे ऐसे उस परमात्मा में बहुत से ब्रह्मांड है। और वो परमात्मा एक ही परमात्मा सब ब्रह्मांडों में व्यापक है, और उसके अलावा और भी हेतु है, और ऐसे में कि उसकी कोई सीमा नहीं है। तो परमात्मा है, उसका कभी अभाव नहीं होता और वो चेतन है, और चेतन होकर के वो आनंद स्वरूप है, और आनंद भी खूब गहरा है। निराकार होकर के घन, जैसे देह के भीतर के मन जो आत्मा है वो निराकार है और चेतन है और आनंद घन है। हमारा शरीर है, इसमें ओल है, थोक है, इसमें दूसरी चीज प्रवेश हो सकती है, हवा, पानी और जड़ पदार्थ, शस्त्र अस्त्र, ये भी इसमें प्रवेश हो सकते हैं शरीर में, इसमें गुंजाश है। हमारी इंद्रियां है, जैसे नेत्र इसके वहां रूप प्रवेश हो सकता है, हमारे कान है इसमें शब्द प्रवेश हो जाता है, नासिका इसमें गंध प्रवेश हो जाती है, तो इन सब इंद्रियों के मां गुंजाश है तो दूसरी चीज प्रवेश हो जाती है। और मन जो उसके मां समझो कि सारे संसार का समग्र प्रवेश है ही, बहुत गुंजाश है। और बुद्धि जो है उसके भीतर में ज्ञान ऐसा प्रवेश की हुई है, और भी बहुत से पदार्थ बुद्धि के बीच के मां गुण और अवगुण के नाम से प्रवेश किए हुए हैं, किंतु जहां हमारी आत्मा है वहां और गुंजाश नहीं प्रवेश की, वहां तो इतनी घनता है कि गुंजाश नहीं है। कांस घन है उसके वहां संजो की अग्नि प्रवेश कर सकती है, और जितनी जो गहरे पदार्थ है जड़ गहरे पदार्थ उसके वहां भी बड़ी गुंजाश है, किंतु आत्मा एक ऐसी चीज है, परमात्मा एक ऐसी चीज है कि जिसके बीच के मां और गुंजाश नहीं, बस परमात्मा के अंदर परमात्मा ही है, उसी का अंश है जीवात्मा, इस वास्ते इसमें कोई गुंजाश नहीं। जैसे देह के बीच के मां जीवात्मा समझो कि अणु घन है, ऐसे परमात्मा जैसे अणु घन है। ख्याल करना चाहिए शरीर में, मन में, बुद्धि में कोई दूसरे प्राणी भी प्रवेश हो सकते हैं, किंतु हमारी आत्मा में नहीं। तो ऐसा अभ्यास करना चाहिए कि आनंद घन माने आनंद ठोस, एकदम प्रचुर आनंद ही आनंद, आनंद के स्वार को दूसरी वस्तु नहीं, इस प्रकार का जो आनंद जो है वो हमारे बाहर भीतर नीचे ऊपर सदा सर्वदा परिपूर्ण है। जो हमारे को सात्विक सुख होता है ऐसा नहीं, सात्विक सुख क्या, जो आपने ईश्वर की भक्ति करने से, सत्संग करने से, पुस्तक बांटने से, वैराग से, जो हमारे को सुख होता है, ज्ञान भक्ति और वैराग और आपने सत्संग और स्वाध्याय आदि जो उत्तम उत्तम साधन है, इसके करने से जो हमारे को सुख होता है वो सात्विक सुख है। आत्म बुद्धि प्रसाद जम सुख है, आत्मा की प्रसन्नता से जो हमारे को सुख होता है ये सात्विक सुख है। और परमात्मा का जो स्वरूप है वो तो गुणों से अतीत है, सात्विक सुख होकर के वो जड़ है, उसका पुरुष से सुख जाता है, पुरुष से सुख का भोगता है, अनुभव करने वाला है। और वो जो परमात्मा का स्वरूप है वो तो स्वयं ही समझो कि अंशुप आप अपने आप को जानता, उसको कोई दूसरा नहीं जान सकता। इस प्रकार से समझना ही उसका उस विषय का ज्ञान है, ऐसा परमात्मा का स्वरूप सब जगहों के बीच के में है, और ये सब जगह और ये पदार्थ है ये नहीं, ये तो बिना वो दिखते है, और परमात्मा यहां पर एकदम प्रत्यक्ष है। तो ऐसा ध्यान करना चाहिए कि जो हमारा ये शरीर है, हर एक आदमी ने अपने शरीर के नीचे ऊपर बाहर भीतर एक अन्य परमात्मा का ही अनुभव करना चाहिए। एक परमात्मा के सिवा कोई भी पदार्थ नहीं है, चाहे दिखते रहो दिखते रहो, भी उनको मानना नहीं चाहिए। जैसे मरुभूमि के मन जल दिखता है और उसके तत्वों को जो जान जाता है वो फिर जल मानता नहीं, वो पिपासा लगी किंतु उस जल को समझे कि मरुभूमि के जल दिखता है नहीं, तो वो लोटा लेकर के दौड़ता नहीं, वो समझता है कि है ही नहीं। सपने से जागने के बाद के जिसके मन और सपने जो आया वो तो सपने के संसार के पदार्थों को सपने के मन जो कुछ उसने देखा उसको देखने के लिए कहीं वो विदेश में आसपास खोज करने के लिए नहीं जाते। वो समझता हूं तो स्वप्न था कल्पना मात्र से किसी है ही नहीं, किंतु जिस वक्त में वो प्रतीत होता उस रूप में वह सत्य दिखती थी। इसी प्रकार से संसार के सारे पदार्थ सत्य दिखते हैं, किंतु जब परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो जाता है तो ये स्वप्न होता हो जाता। जब तक स्वप्न है तब तक उस स्वप्न की संसार सत्य दिखती है, अगर जागृत अवस्था हो जाती है तब वो सपने की संसार है तो स्वप्न हो जाता है, उसकी सत्ता काल्पनिक हो जाती है, कुछ नहीं है। इसी प्रकार जब परमात्मा का ज्ञान हो जाता है, परमात्मा के स्वरूप का जो अनुभव हो जाता है, उसमें जब जाग उठता है तो वहां जागने के बाद ये संसार बस स्वप्न होता है। तो जागने के बाद जो स्थिति है वही स्थिति पहले से ही आपने अनुभव कर लेनी चाहिए कि ये जो भी जो प्रतीत होता है ये कुछ भी नहीं है, बिना ये प्रतीत हो रहे हैं और यहां पर परमात्मा है। वो परमात्मा कौन है कि जिनके संकल्प में हम लोगों का शरीर या संसार, माने मेरा जो शरीर है और या संसार है उस परमात्मा के संकल्प के आधार है। अरे वो संकल्प छोड़ दे तो कुछ भी नहीं है, किंतु संकल्प छोड़ने वाला है वो परमात्मा का जो स्वरूप है वो वास्तविक है। तो असली में जैसा परमात्मा का स्वरूप है उसका तो भाव और उसके स्वाय और चीजों का अभाव। ये साधन बहुत ही उत्तम है, सुगम है और इसकी प्राप्ति बहुत शीघ्र हो सकती है और सर्वोत्तम है। ये परमात्मा के विषय का ज्ञान का साधन है, इसकी बड़ी महिमा गाई। नहीं ज्ञान इन सदृशम पवित्र में विद्यते, इस संसार में ज्ञान के सदृश कोई भी पदार्थ नहीं। और बतला है अभी से श्री पापे हुए सर्वे हुए पाप कृत हुए सर्वण ज्ञान पले में नहीं है वजन संप्रेषे। अर्जुन यदि तुम दुनिया में जितने जो पापी हैं उन सब पापियों में अधिकतर पापी हुए तो भी उस ज्ञान रूपी नौका के द्वारा संसार सागर को पार कर जाएगा। दूसरा दृष्टांत देते हैं यति धर्म से समृद्ध होने वसंत सात गुरु तेज ने ज्ञानाग्नि पूर्व कर्माणी वसंत सात गुरु तेज था। जैसे प्रज्वलित अग्नि संपूर्ण इंधन को भस्म कर डालता है इसी प्रकार से ज्ञानाग्नि सब पापों को भस्म कर डालता है। तो ऐसा जो परमात्मा के स्वरूप का जो ज्ञान है तो ऐसा समझ कर करके और उसे परमात्मा का इस प्रकार से ध्यान करना चाहिए कि ये परमात्मा के सिवा और कोई पदार्थ है ही नहीं। बार बार इस प्रकार से समझो समझने पर और संसार और शरीर दोनों का अत्यंत अभाव हो जाता है। जब ये बात समझ में आ जाती है कि संसार नाशवान है, क्षण मूल है, बिना ही प्रतीत रहे तो इससे परम बहिराग हो जाता है। परम जब बहिराग हो जाता है तो फिर उपरति हो जाती है, फिर संसार का ज्ञान या ध्यान कुछ भी नहीं रहता, केवल परमात्मा का स्वरूप रह जाता है। तो वो कैसा है कि वो आनंद स्वरूप है, तो ऐसा आनंद है कि उसकी कोई सीमा नहीं, अपार आनंद है। और कैसा वो आनंद है कि शांति स्वरूप आनंद है। और कैसा है कि वो आनंद ही आनंद है, दूसरी वस्तु नहीं, इस वास्ते उसको आनंद घन कहते हैं। घन का मतलब प्रचुर है, माने आनंद ही आनंद, और वो वास्तव में है, इस वास्ते उसको दृढ़ आनंद कहते हैं। और वो नित्य और सदा है, शाश्वत है और इतनी होते है, इस वास्ते उसको सत कहते हैं। उस आनंद का अनुभव, उस आनंद को ही इस वास्ते उसको बोध स्वरूप कहते हैं। उस आनंद को ही आनंद में परमात्मा का दूसरा पर्याय शब्द है कि वो बोध स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। जैसे बर्फ का ढेला और जल में गिर दिया जाए, जल रास्ते में समुद्र में गिर दिया जाए, तो उसके चारों तरफ जल ही जाए और वो बर्फ का ढेरा भी जल ही और जल के स्वाके चली, तो उसके बाहर भीतर नीचे ऊपर जल ही जड़ है, तो जल जो है वो जड़ है और परमात्मा सचेतन है। जड़ आकार वाला है वो निराकार है, वो बर्फ का ढेला कितने काल तक जल में रहने से वो फिर जय बन जाता है, गड़ करके एक जय रह जाता है। तो इसी प्रकार परमात्मा के ध्यान के मां थोड़े काल रहने के बाद के बीच के मां उसकी जो अलग सत्ता है वो मिट जाती है और वो परमात्मा के मां घुल मिल जाता है, परमात्मा ही रह जाते हैं और परमात्मा के सिवा दूसरी वस्तु वस्तु नहीं रहती। तो ऐसा ध्यान करना चाहिए कि ये जो मेरा शरीर है, हर एक आदमी अपने विषय में ऐसा समझे कि मेरे शरीर के नीचे ऊपर बाहर भीतर एक परमात्मा का स्वरूप है, वो अक्रिय है और निराकार है, निर्विकार है और क्रिया रहित है, अगर चाहे चेतन है, आनंद स्वरूप है, आनंद है वो चेतन है, चेतन है वो आनंद है, चेतन और आनंद को दो पदार्थ नहीं है। लौकिक जो सुख है उससे ये विलक्षण है, इस बात को समझाने के वास्ते उसको कहा कि लौकिक सुख की यूनिट वो चेतन आनंद, लौकिक सुख है वो तो जड़ है, उसका ज्ञाता और भूता जीव है, और ये जो परमात्मा का जो स्वरूप भूत जो आनंद स्वरूप है ये तो परमात्मा खुद ही अपने आप को जानते हैं, और परमात्मा के सिवा और जो पदार्थ है ये है नहीं, केवल प्रतीत होते हैं। तो इन सबका तो बाध कर देना चाहिए, अभाव कर देना चाहिए, सबके अभाव होने के बाद में जो वस्तु रहती है वो भाव रूप है, वो भाव रूप चीज ही वो चेतन है, वो ज्ञान स्वरूप है, बोध स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। सबका बाध करने के बाद में बाध करने वाली वृत्ति का भी जब बाध हो जाता है तो फिर कुछ भी नहीं रहता, शरीर और संसार का अत्यंत अभाव हो जाता है, फिर जो गैर में जो चीज बच जाती है वो परमात्मा का स्वरूप है, पूरी जीवात्मा जो है परमात्मा से अलग नहीं रहता, उसमें एक ही हो जाता है। जैसे घड़े के फूटने से घड़े का आकाश महाकाश में मिलकर के एक ही हो जाए, तो यहां अज्ञान ही घटे, तो अज्ञान के मिट जाने पर फिर केवल परमात्मा ही रह जाता है, और वो जो परमात्मा का जो स्वरूप है जो बस आनंद घन है, आनंद ही आनंद ब्रह्म स्वरूप है। तो ऐसा समझे कि मानो मैं आनंद के मैं मगन हूं, मेरे नीचे ऊपर बाहर भी तक सब आनंद ही आनंद है, आनंद है वो नित्य और सत है, और मैं जो एक व्यक्ति हूं जो एक प्रकार से समझो कि वास्तु के भीतर के बीच के मां, ये जो व्यक्ति बोल करके कोई चीज नहीं है, आन मान 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 आन को नाम उच्चारण करने से आन प्रत्यक्ष अनुभव होने लग जाता है, शब्द की इतनी शक्ति है कि वो एकदम प्रत्यक्ष आन जो तो प्रत्यक्ष दिखने लग जाता है, बस ऐसा प्रतीत होता है कि आनंद के स्वाद दूसरी वस्तु है ही नहीं, वो आनंद है तो परमात्मा का स्वरूप है, अरे मैं आनंद को अनुभव परमात्मा नहीं है, उसको अनुभव करने वाला वो परमात्मा ही है, तो फिर जीवात्मा बोले जीवात्मा तो उससे भिन्न कोई रहता नहीं, जो है वो परमात्मा है, और परमात्मा ही अपने आप को अनुभव करने वाला है, उसके स्वाद कोई दूसरी चीज नहीं है, तो दूसरी चीजों का बात करने पर अभाव मान लेने पर फिर केवल परमात्मा ही बच रहता है। तो ये समझना चाहिए कि ये संसार हमारा शरीर और ये सब कोई भी वस्तु है ही नहीं, इनके बात करने के बाद परमात्मा रह जाते हैं, तो वो परमात्मा का कैसा स्वरूप है कि आनंद ही आनंद है।